लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहाँ तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय है सामयिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, सबसे पहले बात करें कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण प्रयासों की। कोविड-19 वैक्सीन की न्यायसंगत ढंग से वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में स्थापित कोवैक्स पहल के तहत अब तक 100 से ज्यादा देशों व अर्थव्यवस्थाओं में 3.5 करोड़ से ज्यादा खुराकें वितरित की जा चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, फाइजर बायोटेक और भारत में सीरम संस्थान में बनाई जा रही एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की एक किस्म कोविशील्ड की 3.8 करोड़ से ज्यादा खुराकें अब तक दुनिया के कई देशों में पहुंचाई जा चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रवक्ता ने कहा कि वैक्सीन के साथ साथ संक्रमण से बचने के सभी उपाय अर्थात मास्क पहनना, हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाल के दिनों में एस्ट्राजेनिका वैक्सीन दिए जाने के बाद कुछ गिनी चुनी संख्या में लोगों के रक्त के थक्के जमने के मामले सामने आने से चिंता व्यक्त की गई है। हालांकि ऐसे मामले बेहद कम हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने हाल के दिनों में संक्रमणों की संख्या में आई तेजी और वैक्सीन खुराकों की किल्लत पर चिंता जताई है, जिससे अनेक देशों में टीकाकरण मुहिम पर असर पड़ने की आशंका है। इसके मद्देनजर वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है और आगाह किया गया है कि टीकाकरण के बावजूद सतर्कता लगातार बरतनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रवक्ता डॉक्टर मार्गरेट हैरिस:
People are misunderstanding that, seeming to think that vaccination will stop transmission. That is not the case. We need to bring down the transmission.
लोग ये समझने में गलती कर रहे हैं कि टीकाकरण से संक्रमण का फैलाव रुक जाएगा। ऐसा नहीं है। हमें फैलाव में कमी लाने के साथ साथ टीकाकरण को भी जारी रखना होगा ताकि गंभीर मामलों और मौतों की रोकथाम हो सके। डॉक्टर मार्गरेट हैरिस के शब्द। इस बीच हाल के दिनों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दिए जाने के बाद कुछ गिनी चुनी संख्या में लोगों में रक्त के थक्के जमने के मामले सामने आने पर चिंता जताई गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक रक्त के थक्के जमने और प्लेटलेट संख्या में कमी आने के मामले असाधारण हैं, जिन्हें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ऐसे साइड इफेक्ट के तौर पर चिन्हित किया जाना होगा जो कभी कभार ही सामने आते हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अब तक 19 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं और रक्त के थक्के जमने के केवल 182 मामले ही सामने आए हैं। विशेषज्ञों ने फिर दोहराया है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लिए जाने के लाभ उसके जोखिमों से कहीं अधिक हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल जारी रखा जाना चाहिए, जिसकी वजह से लाखों जिंदगियों को बचाने और गंभीर बीमारी की रोकथाम करने में मदद मिली है।
भारत में मार्च महीने के अंतिम दिनों और अप्रैल के शुरू में कोरोना वायरस के संक्रमण मामलों में अचानक तेजी से उछाल देखा गया है। देश में कोविड-19 की वैक्सीन का टीकाकरण भी विशाल पैमाने पर चल रहा है, फिर भी कोरोना वायरस से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में 2 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर रोड्रिगो आफरीन ने देश में मौजूदा हालात और टीकाकरण मुहिम से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। आइए सुनते हैं सचिन गौड़ से।
भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रोड्रिगो आफरीन ने UN न्यूज हिंदी को बताया कि देश में आर्थिक व सामाजिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। कार्यालय, स्कूल, सामाजिक समारोह, सार्वजनिक परिवहन और अन्य क्षेत्रों में जनजीवन फिर पटरी पर आने से वायरस को दोबारा तेजी से फैलने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में अब भी महामारी का फैलाव अधिकतर शहरी इलाकों में केंद्रित है, लेकिन अब संक्रमण मध्य वर्ग आबादी वाले रिहायशी इलाकों और ऊंची इमारतों में भी फैल रहा है। डॉक्टर ऑफरिन के मुताबिक भारत में अब तक 3 महीनों से कम समय में COVID-19 की 9 करोड़ से ज्यादा खुराकों को दिया जा चुका है। वैक्सीन की मदद से संक्रमण के गंभीर मामलों को रोकने में मदद मिलती है और वायरस के नए प्रकार व रूप उभरने के बावजूद इस बात की संभावना कम है कि वैक्सीन पूरी तरह बेअसर हो जाए।
विश्व महामारी COVID-19 के कारण दुनिया भर में शिक्षण कार्य में व्यापक व्यवधान पैदा हुआ है, जिससे भारत समेत अनेक देशों में करोड़ों छात्रों की पढ़ाई लिखाई पर भारी असर हुआ है। इसके मद्देनजर भारत में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए स्कूल फिर से खोलने और शिक्षण कार्यक्रम जारी रखने के लिए सरकारी एजेंसियों को हर संभव सहायता मुहैया करा रही हैं। इनमें जरूरी दिशा निर्देश भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
पिछले वर्ष COVID-19 के फैलाव की रोकथाम के लिए एहतियाती उपायों के मद्देनजर स्कूल पूर्ण व आंशिक रूप से बंद किए गए, जिससे दुनिया भर में 90% से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। भारत में भी स्कूल कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों में तालाबंदी लागू होने के कारण करोड़ों बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई। भारत में शिक्षा मोर्चे पर आए संकट से निपटने के लिए यूएन एजेंसियां वंचित और हाशिए पर धकेल दिए गए समुदायों के लड़के लड़कियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने देश के 17 राज्यों में घर बैठकर पढ़ाई लिखाई करने की संभावना को साकार करने में योगदान किया है। इस मुहिम के तहत 6 करोड़ बच्चों को मदद मुहैया कराई गई है, जिनमें आधी संख्या लड़कियों की है। साथ ही शुरुआती बचपन में शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ई लर्निंग पाठ्यक्रम जैसे उपायों का भी सहारा लिया गया है। इस क्रम में प्रयास आगे बढ़ाने के लिए बाल विकास से जुड़े 4 लाख कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए गए हैं। खेल के जरिए सीखने को बढ़ावा देते हुए 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों तक पहुंच बनाना भी संभव हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने स्कूलों में COVID-19 संक्रमण से बचाव के लिए 22,000 शिक्षकों और 5 लाख बच्चों तक उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के संदेश पहुंचाए हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने प्रचार सामग्री तैयार की है, जिसके माध्यम से समावेशी शिक्षा और बाल स्वास्थ्य व कल्याण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कहा है कि विश्व नेताओं को सुनी सुनाई बातों से आगे बढ़कर युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक परिषद की 10वीं युवा फोरम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस बैठक में 11,000 से ज्यादा युवाओं ने वर्चुअल माध्यम से शिरकत की थी। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
यूएन प्रमुख ने युवाओं के इस ऑनलाइन कार्यक्रम व उसमें युवाओं की भागीदारी को एक ऐसा मंच करार दिया है जो युवाओं के सामने पेश चुनौतियों से निपटने के नजरिए से महत्वपूर्ण है। इनमें अन्य चुनौतियों के साथ साथ COVID-19 महामारी भी है, जिसकी वजह से हर 8 में से एक युवा शिक्षा से वंचित हो गए हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या लड़कियों की है। हर 6 में से एक युवा बेरोजगार हैं और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि इस संदर्भ में हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ऑनलाइन व आम स्थानों दोनों जगहों पर बदलाव की रफ्तार के प्रति युवा अपनी अधीरता प्रदर्शित कर रहे हैं और अन्याय व कुशासन के लिए हताशा जता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जोर देकर कहा कि शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण संरक्षा और डिजिटल जुड़ाव में ठोस प्रगति की आवश्यकता है और इसे एक न्यायोचित, समावेशी, हरित व टिकाऊ पुनर्बहाली के जरिए साकार किया जाना होगा। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC के प्रमुख मुनीर अकरम के अनुसार ये फोरम पिछले 1 दशक के संकटों व उपलब्धियों पर मनन का अवसर है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वैटिकन स्थित परम धर्म पीठ अंतरधार्मिक परिसंवाद परिषद ने रमादान महीने के उपलक्ष्य में विश्व के समस्त इस्लाम धर्मानुयायियों के प्रति सौहार्दपूर्ण शुभकामनाएं अर्पित की हैं। परिषद की आशा है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर की आशीष समस्त इस्लाम धर्मानुयायियों के आध्यात्मिक विकास का निमित्त बने। संदेश में वैटिकन परिषद ने लिखा, प्रार्थना और उदारता के पवित्र कार्यों सहित उपवास हमें सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर तथा उन सब के करीब ले जाता है जिनके साथ हम रहते और काम करते हैं। साथ ही इससे हमें भ्रातृभाव में एक साथ आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। संदेश में कहा गया, पीड़ा और दुख के इन लंबे महीनों के दौरान विशेष रूप से लॉकडाउन की अवधि में हमने दिव्य सहायता की आवश्यकता को महसूस किया तथा इसके साथ ही भ्रातृत्व और एकात्मता के संकेतों को भी देखा और यह जानकर सुरक्षित रहे कि आवश्यकता के समय में कोई हमेशा हमारे लिए है। यह प्रभु ईश्वर की कृपा का फल है। संदेश में कहा गया कि ईश्वर जिन्होंने हमारा सृजन किया है वे कदापि हमारा परित्याग नहीं करते, वे सदैव हमारी रक्षा को आगे आते हैं और यही हमारी आशा का स्रोत है। मानव भाईचारा अपनी विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों में आशा का स्रोत बन जाता है जो जरूरतमंदों की मदद तथा उनके प्रति एकात्मता की भावना में प्रकट होता है। कोविड महामारी के दौरान हम सब ने इस एकात्मता का अनुभव किया है। धार्मिक, नस्लीय, सामाजिक और आर्थिक सीमाओं से परे लोगों ने कठिनाइयों में पड़े लोगों की मदद की है। यह उदारता के कार्य हम विश्वासियों को स्मरण दिलाते हैं कि भाईचारे का भाव विश्वव्यापी और सार्वभौमिक है। संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र फ्रतेली तूती का संदर्भ देकर संदेश में कहा गया कि आशा हमारे हृदयों में उन वस्तुओं की तड़प को उत्पन्न करती है जो हमें सत्य, भलाई, सौंदर्य, प्रेम, न्याय और शांति के मूल्यों का दर्शन कराती है। संदेश में कहा गया, इसीलिए हम ख्रिस्तियों और मुसलमानों को आमंत्रित किया जाता है कि हम वर्तमान में और भविष्य में भी आशा के संदेश वाहक बने, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को कहा कि कोविड महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न निर्धनता और रोजगार मार्केट से बहिष्करण ने जरूरतमंद समुदायों की मदद करने वाले कैथोलिक कार्यकर्ताओं की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। गुरुवार 15 अप्रैल को लोगों में मूलबद्ध राजनीति शीर्षक से लंदन स्थित धर्मशास्त्र और समुदाय केंद्र द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रेषित एक वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि केवल लोगों के लिए ही नहीं अपितु लोगों के साथ मिलकर राजनीति को प्रोत्साहन प्रदान करें। उन्होंने कहा, निर्धन से निर्धनतम समुदायों में घायल और पुनः जी उठे मसीह के साथ साक्षात्कार से ही हम अपनी मिशनरी शक्ति को पुनः हासिल कर सकते हैं, इसलिए कि खुद कलीसिया का जन्म क्रूस की परिधि में हुआ था। उन्होंने कहा कि यदि कलीसिया गरीबों की उपेक्षा करती है तो वह यीशु मसीह की कलीसिया होना बंद कर देती है तथा एक बौद्धिक या नैतिक अभिजात वर्ग, एक नए प्रकार के श्रेणीवाद या फिर एसेनिस अर्थात पुरानी यहूदी हस्तलिपियों के सदृश जीवन यापन के पुराने प्रलोभनों को सजीव करने में लग जाती है। अमेरिका के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के निर्धनता निवारण कार्यक्रम के तत्वाधान में मानव विकास हेतु कैथोलिक अभियान की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अपने संदेश में संत पापा ने अमेरिका के कैथोलिक धर्माधीक्षों द्वारा आरंभ निर्धनता निवारण योजनाओं की सराहना की तथा उन समस्त पहलों को समर्थन दिया जो संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्धनतम लोगों को प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन में सहायता प्रदान करती हैं। मुहैर एक्सेप्शनल या असाधारण महिला शीर्षक से कलीसिया की आचार्य अविला की संत तेरेसा की घोषणा की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को गुरुवार को प्रेषित एक वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि प्रार्थना ने अविला की संत तेरेसा को एक असाधारण महिला बना दिया। इटली स्थित संत अविला को समर्पित विश्वविद्यालय में 12 अप्रैल को आरंभ उक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 15 अप्रैल को संपन्न हुआ। संत पापा ने कहा कि संत तेरेसा कई मायनों में असाधारण और उत्कृष्ट महिला थी, तथापि उन्होंने कहा यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि इन आयामों में उनकी मान्य प्रासंगिकता उनके लिए महत्वपूर्ण परिणाम से अधिक कुछ नहीं है। प्रभु के साथ उनका साक्षात्कार, प्रभु द्वारा उनके साथ अपनी संयुक्तता को कायम रखने हेतु उनका दृढ़ संकल्प तथा प्रभु द्वारा अर्पित मिशन को भली प्रकार निभाने का मनोरथ, जिसके लिए उन्होंने पूर्ण सादगी के साथ स्वतः को समर्पित कर दिया था। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, एक सुधारक के रूप में संत तेरेसा का साहस, उनकी रचनात्मकता और उत्कृष्टता प्रभु की आंतरिक उपस्थिति का फल है। ब्राजील के कैथोलिक धर्माध्यक्षों को गुरुवार को एक वीडियो संदेश भेजकर संत पापा फ्रांसिस ने कोविड महामारी से प्रभावित हुए लाखों लोगों के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन किया तथा धर्माध्यक्षों से आग्रह किया कि वे इस कठिन समय में लोगों की सहायता करें। ब्राजील का कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन इस समय अपनी 58वीं आम सभा में भाग ले रहा है, जो इस वर्ष ऑनलाइन आयोजित की गई है। ब्राजील के समस्त निवासियों को संबोधित वीडियो संदेश में संत पापा ने कहा कि ब्राजील इस समय अपने इतिहास के सर्वाधिक कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने अपना संदेश उन हजारों परिवारों के प्रति अपने सामीप्य से आरंभ किया जिन्होंने कोविड महामारी के कारण किसी प्रियजन को खो दिया है। उन्होंने कहा, युवा और बुजुर्ग, पिता और माता, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता और स्वयं सेवक, कैथोलिक कलीसिया के पुरोहित और कार्यकर्ता, अमीर और गरीब, इस महामारी ने किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा है। उन धर्माध्यक्षों को उन्होंने विशेष रूप से याद किया जिनकी मृत्यु कोविड महामारी से हो गई है। उन्होंने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन्हें चिर शांति प्रदान करें तथा उनके शोकाकुल परिवारों को सांत्वना दें जो अंतिम क्षणों में अपने प्रियजनों को विदा न कर पाए। पुनरुत्थान में आशा को सुदृढ़ करने का आह्वान कर संत पापा ने कहा कि ख्रीस्त का पुनरुत्थान मृत्यु पर जीवन की विजय और हमारी आशा का अनंत स्रोत है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।